एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य की एक बहुत ही कह सकते हैं अलग और असरदार किताब के बारे में, कर्ट वॉनेगेट की स्लॉटर हाउस 5।
हाँ, और इसका पूरा टाइटल भी काफी दिलचस्प है, स्लॉटर हाउस 5 और द चिल्ड्रंस क्रूसेड, अ ड्यूटी डांस विद डेथ।
बिल्कुल, टाइटल से ही अंदाजा लग जाता है कि कहानी में कुछ गहरा, शायद कुछ विडंबनापूर्ण होने वाला है। बच्चों का धर्म युद्ध और मौत के साथ नाच।
हाँ, और वॉनगट खुद, मतलब 1922 से 2007 तक, वो एक ऐसे लेखक थे जिनके ऊपर दूसरे विश्व युद्ध का बहुत गहरा असर पड़ा, खासकर वो वक्त जो उन्होंने जर्मनी के ड्रेसडन शहर में युद्धबंदी के तौर पर गुजारा।
और वहां की जो भयानक बमबारी हुई थी।
हाँ, वही वो अनुभव उनके लिखने में, उनके दुनिया को देखने के नजरिए में साफ झलकता है।
उनके लिखने का स्टाइल भी तो काफी अलग है, उसमें आपको सटायर मिलेगा,
हाँ, व्यंग, वो जिसे डार्क ह्यूमर कहते हैं, काला हास्य,
साइंस फिक्शन के तत्व भी हैं।
बिल्कुल, और इन सब के पीछे गहरी इंसानियत की भावना भी बहती है।
ये किताब आई थी 1969 में, उस वक्त अमेरिका वियतनाम युद्ध से जूझ रहा था।
सही कहा, और उस माहौल में इस किताब ने युद्ध के खिलाफ उठ रही आवाज को, मतलब एक तरह से और मजबूती दी। शुरू में मिली जुली प्रतिक्रिया थी, पर बाद में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण एंटी वॉर और पोस्ट मॉडर्न किताब माना गया।
पोस्ट मॉडर्न, हाँ, क्योंकि ये सीधी साधी कहानी नहीं है, इसमें आपको लेखक की अपनी जिंदगी के हिस्से मिलेंगे, इतिहास है और कल्पना भी।
बिल्कुल, एक तरह का मिक्सचर है, आत्मकथा, इतिहास, साइंस फिक्शन, सब घुला मिला हुआ है।
तो आज की चर्चा में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कहानी क्या है, इसका मुख्य किरदार बिली पिलग्रिम कौन है, उसकी यात्रा कैसी है।
और वो बड़े सवाल जो ये किताब उठाती है, जैसे समय, युद्ध, और क्या हमारी किस्मत पहले से तय है, या हमारे पास अपनी मर्जी से जीने का हक है, फ्री विल बनाम डिटर्मिनिज्म।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, ये बिली पिलग्रिम है कौन और उसके साथ ऐसा क्या खास होता है?
बिली पिलग्रिम, वो न्यूयॉर्क के इलियम शहर में एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है, मतलब आंखों का डॉक्टर।
अच्छा, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये भी अपने आप में एक विडंबना है ना, जो दूसरों को साफ देखने में मदद करता है।
हाँ, बिल्कुल, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी जो है वो समय के धागों में उलझी हुई है, वो समय में भटक गया है, अनस्टक इन टाइम।
समय में भटक गया है
मतलब वो अपने जीवन के अलग अलग पलों में अचानक कूदता रहता है। कभी वो युद्ध के मैदान में होता है अपनी जवानी में,
अच्छा,
कभी अपने बुढ़ापे के सुकून में, कभी बचपन में, तो कभी भविष्य में, किसी दूसरे ग्रह पर एलियंस के साथ, और इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है।
बाप रे, ये तो बड़ा जीव अनुभव है, तो कहानी सीधी नहीं चलती।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घटनाओं का क्रम नहीं है, बल्कि यादों का, अनुभवों का, भविष्य की झलकियों का एक कोलाज है, जैसे बिखरे हुए टुकड़े हों जिन्हें पाठक धीरे धीरे जोड़ता है।
तो इन बिखरे हुए टुकड़ों को समझने के लिए हमें शायद बिली की जिंदगी के मुख्य धाराओं को देखना होगा।
हाँ, बिल्कुल, तीन मुख्य धागे हैं कहानी के। पहला तो जाहिर है, दूसरा विश्व युद्ध,
एक सैनिक के तौर पर उसका अनुभव।
हाँ, और वो भी कोई हीरो टाइप का सैनिक नहीं, बिल्कुल अनुभवहीन, डरपोक सा, लड़ाई के लिए एकदम फिट नहीं, साथी सैनिक उसका मजाक उड़ाते हैं,
और फिर वो पकड़ा जाता है।
हाँ, युद्धबंदी बन जाता है, और यहीं जर्मनी में वो ड्रेसडन शहर की उस भयानक बमबारी का गवाह बनता है। ये अनुभव उसे तोड़ कर रख देता है।
और दूसरी धारा,
युद्ध के बाद का जीवन।
हाँ,
वो अमेरिका लौटता है, ऑप्टोमेट्रिस्ट बनता है, काफी सफल भी होता है, शादी करता है, बच्चे होते हैं, मतलब बाहर से देखो तो एक टिपिकल अमेरिकन सक्सेस स्टोरी,
लेकिन अंदर से वो एलियंस वाली।
हाँ, ट्राल्फामोड और ग्रह के एलियंस, वो बिली का अपहरण कर लेते हैं, ऐसा कहानी में बताया गया है।
और ये एलियंस कैसे हैं?
दिखने में वो टॉयलेट प्लंजर जैसे हैं।
अच्छा,
हाँ, और उनकी खासियत ये है कि वो समय को चौथे आयाम में देखते हैं, मतलब उनके लिए अतीत, वर्तमान, भविष्य सब एक साथ मौजूद हैं।
तो वो बिली को क्या सिखाते हैं?
वो उसे अपना दर्शन सिखाते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, हर पल हमेशा से मौजूद है और हमेशा रहेगा, इसलिए किसी चीज को बदलने की कोशिश बेकार है। वो उसे अपने ग्रह पर एक चिड़ियाघर में भी रखते हैं।
चिड़ियाघर में इंसानों के?
हाँ, और बाद में वहाँ एक हॉलीवुड एक्ट्रेस मोंटाना वाइल्डहैक को भी लाया जाता है।
बाप रे, ये तो कहानी कई लेवल पे चल रही है, सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं है ये।
बिल्कुल नहीं, सतही तौर पर देखें तो ये युद्ध के सदमे से उभरने की कहानी है, इस अजीब हिंसक दुनिया में कोई मतलब खोजने की कोशिश।
लेकिन गहरे में जाएं तो?
गहरे में ये सवाल है कि क्या हमारे जीवन का कोई मतलब है भी? क्या दुख जरूरी है? और वो सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी मर्जी चलती है या हम सब बस किस्मत के खेल में मोहरे हैं?
फ्री विल है या नहीं?
हाँ।
और बिली खुद कोई हीरो नहीं है, वो एक एवरी मैन है, आम आदमी, न अच्छा न बुरा, बस हालात का मारा हुआ।
शायद वॉनगट ने जानबूझकर उसे ऐसा बनाया है ताकि हम सब उससे जुड़ सकें। हम सब में कहीं ना कहीं एक बिली पिलग्रिम है जो परिस्थितियों के आगे लाचार महसूस करता है।
हो सकता है, और वॉनगट खुद भी कहानी में आते हैं। शुरू में ही वो बताते हैं कि ड्रेसडन के बारे में लिखना उनके लिए कितना मुश्किल रहा है।
हाँ, ये मेटाफिक्शन वाला अंदाज जहाँ राइटर खुद अपनी कहानी का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। तो चलिए कुछ और किरदारों की बात करते हैं जो बिली की कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ, जरूर।
युद्ध के दौरान के साथी।
हाँ।
एक है रॉलिंड वेरी। वो बिली से एकदम उल्टा है। हिंसक है, डोमिनेटिंग है, और युद्ध को लेकर उसके बड़े रोमांटिक ख्याल हैं।
रोमांटिक ख्याल युद्ध को लेकर?
हाँ, वो खुद को और दो दोस्तों को द थ्री मस्केटियर समझता है, जैसे वो कोई हीरो हो।
ये तो युद्ध की झूठी शान का प्रतीक हुआ फिर, जिसे वॉनिगट शायद तोड़ना चाहते हैं।
बिल्कुल। वेरी दिखाता है कि युद्ध का ख्याल ही कैसे इंसान को अमानवीय बना सकता है। और अजीब बात यह है कि जब वो मरने लगता है तो अपनी मौत का जिम्मेदार बिली को ठहराता है,
जबकि बिली तो खुद ही बेचारा होता है।
हाँ, और वेरी की मौत का बदला लेने की कसम खाता है पॉल लज़ारो, एक और युद्धबंदी।
अच्छा।
ये लज़ारो दिखने में छोटा कमजोर सा है, पर अंदर से बहुत जहरीला और बदला लेने की आग में जलता रहता है।
और वो बदला लेता है।
हाँ, वो कसम खाता है कि वो बिली को मारेगा। और सालों बाद जब युद्ध खत्म हो चुका है, शांति का समय है, तब वो अपनी कसम पूरी करता है।
तो ये दिखाता है कि हिंसा का असर कितनी दूर तक जाता है। युद्ध खत्म होने पर भी नफरत जिंदा रहती है।
हाँ, बिल्कुल। बदला लेने की ये जो भावना है, ये कितनी निरर्थक और विनाशकारी हो सकती है।
इन जैसे किरदारों के बीच क्या कोई पॉजिटिव कैरेक्टर भी है?
हाँ, एक है एडगर डर्बी। वो अधेड़ उम्र के एक हाईस्कूल टीचर हैं। नेक आदमी हैं, आदर्शवादी हैं, देशभक्ति के जज्बे से फौज में भर्ती हुए हैं।
डर्बी का रोल क्यों अहम है?
वो शायद उपन्यास के उन गिले चुने किरदारों में से हैं जिनमें आपको असल की शराफत और हिम्मत दिखाई देती है। ड्रेसडन में जब अमेरिकी बंदी बनाए जाते हैं तो उन्हें लीडर चुना जाता है, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हैं।
लेकिन उनका अंत, आपने कहा था वो उपन्यास का सबसे तीखा व्यंग्य है।
हाँ, उनका अंत बहुत दुखद और बेतुका है, ड्रेसडन की उस भयानक बमबारी में जहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं।
हाँ।
डर्बी बच जाते हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद शहर के खंडरों में से वो बस एक चायदानी उठा लेते हैं।
एक चायदानी?
हाँ, और इस छोटे से जुर्म के लिए जर्मन सैनिक उन्हें गोली मार देते हैं।
ओह, ये तो वाकई बहुत बेतुका है, इतनी बड़ी तबाही से बचकर ऐसी छोटी सी बात पे मर जाना।
यही तो, ये घटना युद्ध की पूरी निरर्थकता, उसकी बेमतलब क्रूरता को उजागर करती है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, कोई न्याय नहीं है, बस एक भद्दा मजाक है।
बिल्कुल। और फिर वो एलियंस, ट्राल्फा मॉजरियान, उनका क्या रोल है इस सब में?
वो जैसे मैंने कहा, टॉयलेट प्लंजर जैसे दिखते हैं
और समय को एक साथ देखते हैं।
उनका दर्शन ही यही है कि हर पल तय है, कुछ बदल नहीं सकता, जो हो रहा है वो हमेशा से हो रहा था और हमेशा होता रहेगा।
तो वो एक तरह से नियतिवाद, मतलब डेस्टिनी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
हाँ, बिल्कुल, फेटलिज्म का। उनका मानना है कि जब आप कुछ बदल ही नहीं सकते तो उस पर दुखी क्यों होना, बस उसे स्वीकार करो।
ये दर्शन बिली को शांति देता होगा शायद, उस भयानक अनुभव के बाद।
हाँ, ये उसे एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म देता है। अगर कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है तो मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ, और मुझे दुख मनाने की जरूरत भी नहीं।
लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सच है या बिली के दिमाग की उपज है ये सब, ट्रॉमा से बचने का तरीका।
बिल्कुल। वॉनगट ये सवाल खुला छोड़ देते हैं, क्या ये एलियंस असली हैं या बिली के मन का वहम, ये पाठक को सोचना है।
तो कहानी चूंकि आगे पीछे जाती है, मुख्य घटनाएं कौन सी हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए?
एक तो युद्ध के दौरान का उसका सफर, पकड़ा जाना, वो अपमान भरी यात्रा, वेरी और लज़ारो जैसे लोगों से मिलना, और आखिर में ड्रेसडन पहुंचना,
और फिर ड्रेसडन बमबारी। वो उपन्यास का केंद्र है शायद।
हाँ, बिल्कुल। वॉनगट पहले शहर की खूबसूरती बताते हैं, फिर उस रात की भयावहता दिखाते हैं जब बम गिरे और पूरा शहर मलबे में बदल गया। बिली और बाकी बंदी उस स्लॉटर हाउस 5 नाम के तहखाने में थे, इसलिए बच गए।
स्लॉटर हाउस 5, इसीलिए किताब का नाम।
हाँ, वही। और जब वो बाहर निकलते हैं तो मंजर किसी दूसरे ग्रह जैसा होता है। हर तरफ लाशें, तबाही। उन्हें लाशें हटाने के भयानक काम पर लगाया जाता है।
लाशों की खान, वॉनिगट ने ये शब्द इस्तेमाल किया है।
हाँ, और इसी माहौल में वो एडगर डर्बी की बेतुकी मौत होती है।
युद्ध के बाद वो अमेरिका लौटता है, नर्वस ब्रेकडाउन होता है,
हाँ, इलाज होता है, फिर वो अपनी ऑप्टोमेट्री की फैक्ट्री शुरू करता है, सफल होता है, शादी, बच्चे, पर वो समय यात्राएं चलती रहती हैं, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता।
फिर वो एलियन वाला एपिसोड,
हाँ, उसका कथित अपहरण, फिर जिंदगी में आगे चलकर एक प्लेन क्रैश होता है जिसमें वो अकेला बचता है, उसकी पत्नी वैलेंशिया की मौत हो जाती है एक कार एक्सीडेंट में जब वो उसे मिलने अस्पताल जा रही होती है।
ओह,
इन सब घटनाओं के बाद बिली पब्लिक में ट्राइल्फामाडोरियन फिलॉसफी के बारे में बात करना शुरू कर देता है।
तो लोग क्या सोचते हैं?
उसकी बेटी को लगता है कि वो पागल हो गया है,
और क्योंकि वो भविष्य देख सकता है, उसे अपनी मौत का भी पता होता है।
हाँ, वो जानता है कि पॉल लाज़ारो उसे मारेगा, कब और कैसे ये भी पता है, और वो इसे एकदम शांति से स्वीकार कर लेता है।
कहानी का अंत कहाँ होता है?
अंत हमें वापस 1945 के ड्रेसडन में ले जाता है। बमबारी के बाद खंडरों के बीच शांति है, और तभी एक चिड़िया गाती है, पूटी व्हीट।
पूटी व्हीट, ये क्या मतलब हुआ?
शायद कुछ नहीं, शायद वॉन्यूगट यही कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही के सामने शब्द बेकार हो जाते हैं, भाषा फेल हो जाती है, तो बस ऐसी ही बेमतलब सी आवाज बचती है।
तो इन सब घटनाओं और किरदारों के जरिए वॉन्यूगट कौन से मुख्य विषय उठा रहे हैं? युद्ध की निरर्थकता तो साफ है।
हाँ, वो सबसे बड़ा थीम है। वॉन्यूगट युद्ध की किसी भी तरह की महिमा को नकारते हैं। वो सैनिकों को हीरो की तरह नहीं बल्कि डरे हुए गुमराह बच्चों, द चिल्ड्रंस क्रूसेड की तरह दिखाते हैं।
ड्रेसडन बमबारी भी किसी बहादुरी का नहीं बल्कि एक तरह के मशीनी कत्लेआम का उदाहरण है।
बिल्कुल, और डर्बी की मौत दिखाती है कि युद्ध में नैतिकता कितनी बेमानी हो जाती है, और हर मौत पर वो वाक्य दोहराया जाता है,
तो यूं ही चलता है, सो इट गोज।
हाँ, 106 बार ये वाक्य जैसे एक मंत्र बन जाता है पूरी किताब में।
इसका मतलब क्या है? क्या ये उदासीनता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता?
नहीं, उदासीनता नहीं, ये शायद मृत्यु और नुकसान की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के स्वीकार करना है। ये ट्राइल्फामाडोरियन नजरिए का सार है, जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता।
तो ये असहनीय को सहने का एक तरीका बन जाता है।
हाँ, और यहीं से वो दूसरा बड़ा सवाल जुड़ता है, नियतिवाद बनाम स्वतंत्र इच्छा, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल।
क्या सब कुछ पहले से तय है जैसा ट्राइल्फामाडोरियन मानते हैं, या हमारे पास चुनने की आजादी है?
बिली तो ज्यादातर निष्क्रिय ही रहता है, जिंदगी उसे बहाकर ले जाती है। क्या ये उसकी कमजोरी है या फिर यही परम सत्य को जान लेने की निशानी है?
वॉन्यूगट इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते हैं ना?
नहीं, वो पाठक को सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसी दुनिया में जहां ड्रेसडन जैसी घटनाएं हो सकती हैं, क्या किस्मत को मान लेना ही दिमाग को शांत रखने का एकमात्र तरीका है?
और समय, यादें और सदमा, ट्रॉमा, ये भी बहुत अहम है।
हाँ, बिली का समय में भटकना PTSD का एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। भले ही उस जमाने में ये टर्म इतना आम ना रहा हो, अतीत के भयानक अनुभव वर्तमान की शांति को बार बार तोड़ते हैं।
हॉरर किताब की जो बनावट है वो टूटी फूटी सी, नॉन लीनियर, वो भी शायद इसी बिखरे हुए मन की नकल है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि ट्रॉमा हमारे समय के सीधे सरल एहसास को कैसे तोड़ देता है। यादें बेतरतीब ढंग से आती हैं,
और वो भाषा की सीमा वाली बात, पूटी वीट।
हाँ, वॉन्यूगट खुद कहते हैं कि नर संहार जैसी चीज के बारे में कुछ भी समझदारी भरा कहना नामुमकिन है, शायद इसीलिए वो इतनी सरल भाषा, दोहराव और डार्क ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पारंपरिक तरीके शायद फेल हो जाते हैं ऐसी हकीकत को बयान करने में।
तो वॉन्यूगट का जो स्टाइल है, नॉन लीनियर कहानी, खुद कहानी में आ जाना, वो सो एट गोज का दोहराव, व्यंग्य, साइंस फिक्शन, ये सब सिर्फ सजावट नहीं है?
नहीं, ये उनके मैसेज का हिस्सा है। ये पाठक को आराम से बैठने नहीं देता, ये उसे चौंकाता है, सोचने पर मजबूर करता है।
इस किताब को पढ़कर कैसा महसूस होता है, मतलब भाव क्या उभरते हैं?
एक अजीब सा मिक्सचर है। एक तरफ ड्रेसडन की विभत्सता और बिली के दर्द को महसूस करके बहुत उदासी होती है, दूसरी तरफ वॉन्यूगट का जो अजीब सा मजाक है वो कहीं कहीं हंसा भी देता है।
और बिली के लिए सहानुभूति होती है?
हाँ, बहुत। वो बेचारा टूटा हुआ सा लगता है, पर फिर भी किसी तरह जी रहा है। वॉन्यूगट उसे बहुत करुणा से देखते हैं।
तो क्या अंत में निराशा का भाव रहता है या कुछ और?
नहीं, निराशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति कह लीजिए या सहनशीलता। ये किताब कोई आसान जवाब नहीं देती, पर यह मुश्किल हालात में जीने का एक नजरिया जरूर देती है।
स्वीकार करने का नजरिया,
एक्सेप्टेंस। हाँ, वो ट्राइफोमाडोरियन फिलॉसफी। चाहे वो सच हो या बिली का वहम, उसके लिए जिंदा रहने का एक जरूरी टूल बन जाती है।
ये किताब हमें युद्ध और हीरोइज्म के बारे में बनी बनाई धारणाओं पर सवाल उठाने को कहती है।
बिल्कुल, शायद सबसे बड़ी जीत सिर्फ जिंदा बच जाना ही है, और शायद इतने बड़े दुख और नुकसान को झेलने का सबसे गहरा तरीका वही शान स्वीकृति है, जो तो यूं ही चलता है, मुझे लगती है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, न सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बल्कि वियतनाम के बारे में भी, और आज भी जो दुनिया में चल रहा है।
हाँ, वॉनगट का सवाल आज भी उतना ही मौजू है, हम इस हिंसा और बेतुकेपन से कैसे निपटें?
तो क्या कह सकते हैं, ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
शायद यही कि भयानक नुकसान और जिंदगी की ऊटपटांग घटनाओं के सामने भी शायद स्वीकृति में ही एक तरह की शांति मिल सकती है, भले ही वो शांति कितनी ही नाजुक क्यों ना हो।
या शायद ये कि दुनिया की सारी क्रूरता और अफरातफरी के बीच भी इंसान की करुणा और मतलब की तलाश, वो मायने रखती है, भले ही वो तलाश कभी पूरी ना हो और शब्द उसे बयान न कर पाए।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।